أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاسبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سيدنا ومولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أشد شيعتنا لنا حبا يكون خروج نفسه كشرب أحدكم في يوم السيف الماء الباردة. مومنین، مومنات، عزاداران مظلوم کربلا، پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مسلسل یہ توفیق عنایت کرتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی عنوان سے اپنے آپ کو مشغول ذکر محمد و آل محمد کر لیا کرتے ہیں. یہ اس کی توفیق خاص اور اس کی بہترین اور نیک ترین توفیقات میں سے ایک توفیق ہے، اور یہ ایک ایسی توفیق ہے کہ جو مزید اور توفیقات کا راستہ ہموار کرنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. پروردگار عالم کی رضائیں ان لوگوں کی شامل حال ہو جاتی ہیں کہ جو ان پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے امر کو زندہ کرتے ہیں، ان کے کلام کو یاد کرتے ہیں، ان کی احادیث کو ذکر کرتے ہیں، اور ان کے نورانی کلام سے فیض یاب ہوتے ہیں، اپنے دل کے ایمان کے نور میں اضافہ کرتے ہیں. مسلسل ہمارا جو عنوان گفتگو تھا وہ اختیارات و تصرفات اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے تھا، اور چند ایک عرائض آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کا موقع ہمیں میسر آیا. انشاءاللہ آج کی گفتگو اس سلسلے کی آخری گفتگو ہوگی، اور امید ہے کہ پروردگار، یقین ہے ہمیں کہ پروردگار ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرمائے گا، اس لیے کہ ان اذکار پہ، اس ذکر پر، ان بیانات پر مہر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح سے ثبت ہے کہ ہم نے مصائب کا ذکر بار بار کیا. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجلس عزا کا جو کانسیپٹ ہے اور جو مجلس عزا کا ماڈل ہے، وہ ماڈل کے جو آئمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے چلا رہا ہے، وہ جو ماڈل ہے وہ مصائب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام بیان کرنے کا ہی ایک حوالہ ہے کہ مجلس عزا وہی کہ جس میں مصائب ذکر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام ہو، ذکر مصائب سید الشہداء علیہ السلام ہو، اور اسی مصائب کے ذکر کے صدقے میں یہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نورانی کلام بیان کر پاتے ہیں، یا وہ احادیث کہ جو خود میراث اہل بیت علیہ السلام میں سے ہے اور جو ان کا نورانی کلام ہے اسے ہم بیان کر سکتے ہیں. یہ فیض بھی امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں ہمیں ملتا ہے اور میسر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو عرب ثقافت کے اندر جہاں جہاں پر بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کے چاہنے ماننے والے رہتے ہیں اور جو مجالس عزا کو برپا کرتے ہیں تو ابتدا میں نعی کرتے ہیں اور انتہا میں بھی نعی فرماتے ہیں. نعی یعنی کہ نعایا، نوحا، گریا، مصائب کا بیان، لہن کے ساتھ جو مصائب پڑھتے ہیں ان کے یہاں پر اسے نعی کہا جاتا ہے. لہٰذا ابتدا میں بھی مصائب، انتہا میں بھی مصائب، یعنی ابتدا میں سٹارٹ میں بھی مصائب، اینڈ میں بھی مصائب، درمیان میں حدیث کا بیان ہوتا ہے، تاکہ یہی عنوان ہو کہ ہم نے تو ذکر مصائب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مجلس کو سجایا تھا، درمیان میں तबर्रुक के लिए और उनके एहयाए अम्र की नीयत से हमने अहादीस अहले बैत अलैहिस्सलाम को भी बयान कर दिया। लिहाजा इस बात को हमेशा याद रखिए कि ये मजालिस जिन्हें हम मजालिस अज़ा कहते हैं और इन्हें मजालिस अज़ा ही कहना चाहिए, यकीनन दौर तरक्की याफ्ता होता जा रहा है और जिद्दत भी आ रही है और तब्दीलियां भी आ रही हैं और तरक्की भी हम कर रहे हैं और एडवांसमेंट की तरफ, डेवलपमेंट्स की तरफ भी जा रहे हैं, मगर एक बात याद रखिएगा, हमारा इम्तियाज़ हमारे मकतब का और हमारा जो मसलक है इसका इम्तियाज़ ये है कि जिस तरह से मजलिसें होती हैं इसी तरह से मजलिसें होती रहें, कि फ़र्श पर बैठकर सुनने वाले जिक्र सुने, मसाइब को सुनकर रोएं और इसी तरह से फ़र्श अज़ा का बिछाया जाता रहे। ये एक अमानत है, परवरदिगार हमें इसे महफूज रखने की तौफीक इनायत फरमाए कि हम इसके अंदर को रद्दो बदल ना करें। अज़ान मोहतरम, मैं बात को जल्दी से मौजू की तरफ ले आऊं, फिर कहीं ये ना हो कि बात कहीं की कहीं निकल जाए। अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के इख्तियारात और उनके तसर्रुफात इतने हैं, उसका बयान इतना तवील है कि जिसे समेटा नहीं जा सकता। मिसालें हैं कि चलती चली जा रही हैं, वाकयात और रिवायात हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं है, मगर बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि कौन सी ऐसी रिवायत, कौन सा ऐसा वाकया, कौन सी ऐसी हदीस कि जो इंसान के दिल पर लग जाए और उसके मारिफत में इजाफे का सबब बन जाए। और ये उस वक्त होगा कि जब इंसान सीखने के लिए बैठेगा और समझने के लिए बैठेगा और चाहेगा कि मैं मकाम अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम को वाकयान समझूं और मैं कबूल करूं, और जो इनका मकाम अल्लाह ने इन्हें अता किया है वो मैं चाहता हूं कि परवरदिगार आलम कुछ उसकी झलक मुझे मिल सके। पूरा इहाता तो उनकी कुन है हकीकत का इंसान कर ही नहीं सकता, इसलिए कि उसकी वो जहन, उसकी अकल, उसका जहन, ये सब इतना महदूद है। और ये हस्तियां हैं कि जिनकी कोई हद ही नहीं चलती चली जा रही हैं। इनका इल्म देखें लामहदूद, इनकी शजाअत देखें लामहदूद, इनका ईमान देखें कि जो जिसका कयास नहीं किया जा सकता, जिसे तोला नहीं जा सकता। हाँ, अगर तोलना था तो परवरदिगार आलम के हबीब ने, रिसालत माब ने इस अंदाज से अपने बंदों को समझाने की कोशिश की, एक झलक दिखलाने की कोशिश की कि लौ अन्न समावात वल अरज़ीना वुज़िअता फ़ी कफ़तिन व ईमान अलीन फ़ी कफ़ा लरजह ईमान अली, कि अगर मीज़ान के दो पलड़े हों और उन दो पलड़ों में से एक पलड़े पर सातों तबक रख दें ज़मीन के, और उसी मीज़ान के पलड़े पर, अभी दूसरे पलड़े पर नहीं आए हैं, उसी पलड़े पर अगर सातों तबक ज़मीन के रख दें, सातों आसमान रख दें, तो उसका कितना वज़न होगा ज़रा सोचिए। और दूसरे तबक पर, दूसरे पलड़े पर अगर मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम का इल्म नहीं, शजाअत की बात नहीं हो रही, इताअत की बात नहीं हो रही और दूसरी चीज़ों की बात नहीं हो रही, बात सिर्फ और सिर्फ ईमान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हो रही है, सिर्फ अली का ईमान दूसरे पलड़े पर रखोगे तो जिस पलड़े पर मौला का ईमान होगा लरजहा ईमान अली, वो भारी हो जाएगा। और इसी तरह की एक हदीस सरकार हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मोमिन कुरैश मोहसिन इस्लाम के लिए भी आई है रिवायतों के अंदर, कि अगर एक पलड़े पर जमीन और आसमान को रख दिया जाए और दूसरे पे ईमान हजरत अबू तालिब रखा जाए अलैहिस्सलाम, तो जिस पर सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ईमान रखा जाएगा वो पलड़ा भारी होगा। और ये वो हस्तियां हैं कि जिनके मकामात, जिनकी मंजिलतें इतनी आला और इतनी अरफा हैं कि अगर आप देखें हजरत जिब्रील अमीन, अमीन वही खुदा, रूहुल कुदस, रूहुल अमीन, जब जनाबे जिब्रील ने ये देखा, आसमान की तरफ निगाह की, कुछ अनवार नजर आए, और ये अनवार किनके थे? अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के, आइम्मा हुदा के अनवार को देखा, और उन अनवार को देखने के बाद दुआ की, बारे इलाहा इन अनवार को देखने के बाद मैं तुझसे दुआ करता हूं कि परवरदिगारा, मुस्तदरक सफीनतुल बिहार की रिवायत कहते हैं, जनाब जिब्रील, ए परवरदिगार मुझे इनकी खुदामी का शरफ इनायत फरमा। ये जनाब जिब्रील कहते हैं कि ए खुदा मुझे इन अनवार की खिदमत का मौका इनायत कर, इनकी खिदमत का शरफ इनायत फरमा। और उसके बाद फिर परवरदिगार ने दुआ कबूल तो की। अब आप देख लीजिए कि कमाल है खिदमत दरे अहले बैत है कि कितने मलाइका हैं, कितने मलाइका हैं, अनगिनत मलाइका हैं। अल्लाह ने अपनी मखलूकात में से जितने मखलूकात मलाइका खल्की हैं उतनी मखलूकात और कोई नहीं, ना इंसान इतने खल्की है, ना हैवान, ना जमादात, ना नबातात। सिर्फ जो परवरदिगार आलम ने सबसे बड़े नंबर्स में और सबसे बड़ी ज्यादा तादाद में खल्क किया जिन्हें, उन्हें मलाइका कहते हैं, उन्हें फरिश्ते कहते हैं। कितने फरिश्तों के नाम हमें याद है? एक जिब्रील का नाम याद है, एक इसराफील का नाम याद है, एक इसराइल का नाम याद है, और एक रिजवान जन्नत का नाम है याद। कितने कितने मलाइका हैं कि जिनका हमें नाम याद है? अब मैं आपकी खिदमत में हाथों को जोड़कर अर्ज करूं कि किन किन का नाम हमें याद है। हमें नाम याद है जनाब जिब्राइल का, कि जो जनाब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का झूला झुलाने वाले थे, इसलिए जिब्रील का नाम याद है। हमें नाम याद है अगर इसराफील का, तो इसलिए कि वो जनाब सैयदा की चक्की चलाने वाले थे। जनाब मीकाइल या जनाब इसराफील, इन दो में से एक, जो जनाब सैयदा की चक्की चला रहे थे उस वक्त के जब बीबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सुलाते सुलाते, उनका झूला झुलाते झुलाते इतनी शदीद थकन के आलम में थी कि बीबी की आंख लग गई। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि ये मेरी कनीज फातिमा जहरा, इनके हाथ के चक्कियां चला चक्की चला चला कर, चक्की पीस पीस कर हाथों से खून बरामद हो गया। वो हाथ के जिसकी एक उंगली अगर इशारा कर देती तो वो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देता कि जिस पर ईमान, जिस चीज पर ईमान बनू नजरान के ईसाइयों को भी था, इस बात पर यकीन, वो हाथ चक्कियां पीस रहे हैं। अल्लाह अकबर, जिन हाथों में अल्लाह ने निजाम रखा है, वो विलायतें और वो इख्तियारात रखे हैं कि जो इख्तियारात हर आम बशर के पास नहीं है, वो इतने बड़े इख्तियारात रखने वाला हाथ हजरत सैयदतुन्निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा का चक्की चला रहा है, यहां तक कि खून जारी हो गया बीबी के हथेली मुबारक से, दस्त मुबारक के हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा से खून बरामद हुआ। खुदा ने कहा जाओ मिकाइल तुम चक्की चलाओ, जाओ जिब्राइल तुम हुसैन का झूला झुलाओ, ना हुसैन उठने पाए और ना मेरी कनीज जहरा उठने पाए। इन दोनों के आराम में जरा बराबर का खलल नहीं होना चाहिए। अगर ये दीन की खिदमत करते करते और घर के कामों से भी थक जाएं तो परवरदिगार आलम मलाइका को इनकी खिदमत के लिए भेज देता है, लिहाजा ये आम हस्तियां नहीं है, ये बड़ी आला मंजिलत वाली हस्तियां हैं। खैर, हम आगे बढ़े बात को। लिहाजा जो रिजवान जन्नत है हसनैन अलैहिस्सलाम क्या दर्जी बनकर आ गया, उनका नाम हम सबको याद है। इसके माना यह हुए कि अगर तुम अपनी पहचान कायनात के सामने करवाना चाहते हो, चाहते हो कि तुम्हें कोई भूल ना जाए और तुम्हारा नाम ऊंचा हो जाए, तो अपना नाम अहले बैत के नाम के साथ जोड़ लो। ये इतने बुलंद नाम हैं, परवरदिगार आलम ने इन नामों को इतनी बुलंदी अता फरमाई है कि अगर तुमने अपना नाम इनके साथ भी जोड़ लिया, अगर तुमने खुद को इनसे मंसूब कर लिया, तो उसी तरह से तुम्हें भी परवरदिगार आलम कुछ ना कुछ बुलंदी जरूर अता करेगा। उनके मनसब के करीब आने की कोशिश ना करना, उनकी फजीलत के अंदर उनकी बराबरी करने की कोशिश ना करना, लेकिन वो जितनी बुलंद हस्तियां हैं उतनी बुलंद तो हम नहीं हो सकते, लेकिन यकीनन फरिश्ते कौन याद रखता है, कितने फरिश्ते हैं, किन किन का नाम हमें याद है। एक फुतरुस कि जो आ गया, जिसे मिल गई शिफा हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के झूले से, उनका नाम याद है। सलसाइल का नाम फिर कम याद है, दरदाइल का नाम फिर कम याद है, फुतरुस का नाम बड़ा याद है। रिजवान जन्नत का नाम हमें याद है, जिब्राइल का नाम याद है, मीकाइल का नाम याद है। ये अफराद और सितारों के अंदर वो सितारा दो जो दरे हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा पर उतर आया, उस सितारे जोहरा का नाम हम सबको याद है। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को खुदामी अहले बैत के लिए मुंतखब किया, या परवरदिगार आलम ने इसे ये शरफ इनायत किया कि ये वाला सितारा जाएगा और अक्द हजरत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का पैगाम लोगों को सिंबॉलिक तरीके से समझा देगा और सुना देगा। अब अजीजाने मोहतरम जरा ये देखिए कि जनाब जिब्रील कह रहे हैं कि ऐ खुदा मुझे इनकी खुदामी का शरफ इनायत फरमा, और फिर देखिए जिब्रील की क्या उड़ान है और जिब्रील की क्या तरक्की है। अब आ जाइए, मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और आने के बाद कहा कि मौला मैं एक ताजिर हूं और हर साल हमें 5 लाख दिरहम या 5 लाख दीनार का नुकसान होता है हमारे कारोबार के अंदर, इसलिए कि तुगयानी हो जाती है, हमारी तरफ जो दरिया है समंदर है उसमें तुगयानी हो जाती है, उसका लेवल ऊपर आ जाता है, वो बढ़ जाता है। बारिशों की वजह से या पीछे से आने वाले पानी की वजह से वो उसका लेवल बढ़ जाता है, लिहाजा शहर में या हमारे खेतों में या हमारे कल्टीवेटिंग लैंड्स के अंदर पानी आ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि हमें हमारी जो कमाई है और जो हमारा सामान है वो सारा का सारा डूब जाता है, पानी की नजर, सैलाब की नजर हो जाता है, हमें 5 लाख दिरहम का हर साल नुकसान होता है। इमाम अलैहि सलाम ने मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम आका अलैहि सलातो वस्सलाम मौला अपने दस्ते मुबारक की अंगुश्तरी उठा निकाल कर देते उन्हें और उस ताजिर को कहते हैं जाओ और जाने के बाद ये अंगूठी समंदर के हवाले कर देना, समंदर के अंदर डाल देना और फिर ये अब तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। वो ताजिर कहता है कि मैंने मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम आका व मौला से वो अंगुश्तरी ली, अंगूठी ली और उसे ले जाकर पानी के हवाले कर दिया। आज तक इतने साल गुजर गए, आज तक उस दरिया के अंदर कभी तुगयानी नहीं हुई। ये उस अंगूठी का कमाल है कि जो दस्ते मौला इमाम सैयद सज्जाद अलैहि सलाम से मंसूब हो गई। तो जब उस अंगूठी का ये आलम है तो खुद मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम की फजीलत का क्या आलम होगा। यह है वो मकाम और यह है इनकी वो मंजिलत कि जो अपने आप को इनसे मंसूब करता चला जाएगा वो भी साहिब फजीलत और साहिब करामात और साहिब कमालात होता चला जाएगा। आइए सरकारे अबुल हसन मौला वाका हजरत अली इब्ने मूसा रज़ा अलैह अफजलुत तहियत व सना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला की एक हदीस है और किस तरह से मलाइका, अब देखिए हमने वो मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम वाला जो हज वाला वाकया था वो आपकी खिदमत में अर्ज किया कि उसके अंदर कैसे मलकुल मौत इमाम अलैहि सलाम का मुती और फरमा बरदार है। यहां पर मौला रजा अलैहि सलाम की खिदमत के अंदर मलाइका किस तरह से आपकी फरमा बरदारी कर रहे हैं और आपकी ताजीम और आपके एहतराम के अंदर मसरूफ अमल है उसकी एक झलक देखिए। अंदाज यूं है कि मौला रजा अलैहि सलाम अपने एक सहाबी की तीमारदारी के लिए और उसकी अयादत के लिए, उसकी खबरगिरी के लिए, उसकी तबीयत पूछने के लिए मौला तशरीफ लेकर आए। वो मरजुल मौत के अंदर मुबतला था, इतना शदीद बीमार था कि ऐसा लग रहा था कि ये अभी मर जाएगा, इंतकाल कर जाएगा, लेकिन मौला रजा अलैहि सलाम के तशरीफ लाने से उसकी सेहत ठीक हो गई, उसकी तबीयत ठीक हो गई और मनाकिबे इब्ने शहर आशूब हो गया और बहुत सारी किताबें बिहारुल अनवार के अंदर खुद ये वाकया मौजूद है। लेकिन अर्ज आप अर्ज खिदमत यह है कि मौला अलैहि सलाम, मौला रजा अलैहि सलाम जब उसके पास आए, उसके घर तशरीफ लाए आका, तो जैसे ही मौला के कदम में मुबारक उसके घर में पड़े उसकी सेहत ठीक हो गई और वो बैठा। वो कि जो सकरातुल मौत जैसी कैफियत के अंदर था, एक मर्तबा कि जो आंखें ही नहीं खोलता था, कि जो सोता रहता था और जिसकी आंखें बंद रहती थी और बिस्तर पर ही लेटा रह रहा था, जैसे ही इमाम आली मकाम हजरत मौला वाका अबुल हसन मौला बाबुल हवाई अली इब्ने मूसा रजा अलैहि सलातो वसलाम तशरीफ लेकर आए, वो खड़ा हो गया एहतराम से और बैठ गया उठकर और इमाम अलैहि सलाम की खिदमत में कहता है, मौला ने आकर पूछा कि कैफा असबहता, तेरी तबीयत कैसी है, कैसा महसूस कर रहा है। तो वो सहाबी कहता है कि मौला उसका आलम क्या पूछते हैं कि जो मौत को देखकर वापस आया है, ये तो मौला आप तशरीफ ले आए, ये आप तशरीफ ले आए जिससे मैं ठीक हो गया, मुझे बाकायदा महसूस हो रहा है कि आपकी आमद से मेरी तबीयत बहाल हुई है। लेकिन मौला ये बताइए कि उसका आलम क्या होगा कि जो मौत को देख के वापस आ रहा है। इमाम अलैहि सलाम ने फरमाया तूने मौत को नहीं देखा अभी, अभी तो तू एक ऐसी शय को देखकर आ रहा है कि जो मौत से तेरा तारुफ करवाने वाली थी, मौत तक तू अभी नहीं पहुंचा था, मौत से मिलाने वाली शय से तू मिलकर आ रहा है। लेकिन इमाम अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दो ही तरीके के लोग हैं कि अन्नासो किस्मान या कि अन्नासो रजुलान, इस तरीके से रिवायत के जुमले हैं कि इंसान की दो किस्में, दो ही तरीके के लोग हैं इंसानों में, मुस्तरीहुन बिल मौत वल मुस्तराहु मिनहू। एक वो किस्म है लोगों की कि जो मौत से राहत ले लेते हैं, मौत उनको आके राहत दे देती है। एक किस्म इंसानों में से उन लोगों की है कि जिनको मौत आती है राहत देने के लिए, गौर से सुनिएगा, और दूसरी किस्म उन लोगों की है कि जिनकी मौत से दूसरे लोग राहत सुकून में आ जाते हैं। गौर कीजिएगा, एक तरीका, एक किस्म लोगों की वो है कि जो मौत से सुकून में आ जाते हैं, खुद सुकून में आ गए, और कुछ ऐसे हैं कि जिनकी मौत दूसरों के लिए सुकून बन जाती है। अल्लाह अकबर, परवरदिगार बचाए ऐसी मौत से कि जिस मौत के बाद दूसरे सुकून में आ जाएंगे कि अच्छा हुआ जान छूटी चला गया। इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर तू चाहता है कि पहली किस्म में से तेरा शुमार हो, पहली किस्म में से तेरा शुमार हो, तो तू तजदीद अहद कर परवरदिगार आलम से, हम अहले बैत की विलायत के जरिए से, हम अहले बैत की इमामत के इकरार के जरिए से, हम अहले बैत की मोहब्बत के जरिए से परवरदिगार आलम से तजदीद अहद कर, अपने प्रॉमिस को रिन्यू कर। कौन से प्रॉमिस को रिन्यू कर, और रिन्यू क्यों कर, आज से प्रॉमिस क्यों नहीं कर। एक प्रॉमिस है कि जो तूने पहले किया है, जिसे रिन्यू करने का कहा जा रहा है, और वो कब हुआ था मैं उस जानिब नहीं जा रहा, वरना बात कोई और शुरू हो जाएगी। लेकिन अपने तजदीद अहद करो हम अहले बैत की विलायत के जरिए से, तकूनो मुस्तरीहुन बिल मौत। तो याद रखना, फिर तेरा शुमार उन लोगों में से हो जाएगा कि जिन्हें मौत आती ही राहत देने के लिए है। लेकिन अज़ान मोहतरम, यह तो आपने हदीस समाध फरमा ली। इस सिनेरियो के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ कि जो दरमियान में मैं उससे गुजर गया, मैंने सोचा कि पहले हदीस आपको बयान कर ली जाए और उसके बाद वो जो हुआ वो आपको सुना दिया जाए। जब ये बैठा हुआ था तो इसने इमाम अलैहिस्सलाम को देखा कि मौला अपनी मौला या तो खड़े हुए हैं, मौला तशरीफ फरमाए, और जब मौला उसकी इयादत कर रहे हैं अपने उस सहाबी की, तो देखा उस सहाबी ने कि मौला रजा अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द मलाइका की एक फौज है कि जो खड़ी हुई है, और जब से मौला रजा अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए हैं वो खड़े ही हैं, एक पाव पे नहीं खड़े होते, जिसको कहते हैं वो खड़े हुए, और बैठते नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम से उस सहाबी ने कहा, अब सहाबी का भी एक मरहला होगा, सहाबी को आम नहीं होगा कि इमाम उसकी अयादत के लिए आ रहे हैं, इमाम के आने से उसको शिफा मिल रही है, जब शिफा मिल रही है तो बता रहा है कि मौला मैं यहां तक गया था और यहां से वापस आया हूं, फिर मौला उसे बताते नहीं तू यहां तक नहीं गया था, तू मौत से नहीं बल्कि मौत से मुतारिफ कराने वाली चीज से मिलकर आ रहा है। और इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम उसे यह तोहफा अपनी हदीस की सूरत में इनायत भी कर रहे हैं कि मुस्तरीहुन बिल मौत वल मुस्तराहु मिनहु, यह भी फरमा रहे हैं। लेकिन वो साहब ये कहता है कि मौला ये बैठते नहीं है, अगर आप इन्हें कह देंगे तो फिर ये बैठ जाएंगे, ऐसा लगता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल तूने बजा कहा, और इमाम अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें इशारा किया तो फिर वो बैठे, या इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ रखते हैं तो फिर उसके बाद मलाइका बैठे। और उन लोगों में से किसी एक ने कहा कि अगर इमाम अलैहिस्सलाम खड़े रहें तो ये ताअबद खड़े रहेंगे, ये बैठेंगे नहीं, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने इन मलाइका को, इन फरिश्तों को इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की, इमाम बरहक की इताअत का ऐसे हुक्म दिया है कि अगर इमाम मासूम खड़ा है ये भी खड़े रहेंगे, इमाम मासूम बैठ जाएगा तो ये भी बैठ जाएंगे, इमाम मासूम हरकत करने लगेंगे तो ये मलाइका भी उनके साथ हरकत करने लगेंगे। इतने मुतीओ फरमाबरदार कि इमाम अलैहिस्सलाम के हरकत से हरकत में आ जाने वाले, सुकूनत से सुकून में आ जाने वाले। खैर, लेकिन अजीजाने मोहतरम, ये उस आलम, उस शख्स का आलम है कि जो अहले बैत अथार से अपना राबता इतना अच्छी तरह से जोड़ता है कि फिर मौत अगर आती भी है ना तो उसके लिए खौफ करने वाली बात नहीं है, बल्कि ये उसके लिए राहत और आराम और सुकून लेकर आती है। ये किसका आलम है? उसका आलम कि जो अपने तजदीद अहद करे, किस चीज के जरिए से खुदा से तजदीद अहद करे, अहले बैत अथार की इमामत, उनकी विलायत, उनकी मोहब्बत के जरिए से, वो इख्तियार जो खुदा ने उन्हें अता किया है, वो तसर्रुफात जो खुदा ने उन्हें अता किए हैं, उस पर ईमान रखे। तो ये याद रखे इंसान कि जिनकी मोहब्बत का दम भरता रहेगा, वक्त आखिर वो उनकी मदद के लिए जरूर आते हैं। उनकी विलायत का ईमान रखना, पर ईमान रखना, उनके इख्तियारात, उनकी इमामत पर ईमान रखना। और फिर मौला रजा अलैहिस्सलाम ही की एक हदीस वो सुनाकर फिर मैं दोबारा से फजीलत के बाब की तरफ आ जाना चाहता हूं, और कुछ एक दो वाकयात आपकी खिदमत में इनकी अफजलियत के एतबार से बतलाना चाहता हूं कि कैसे इन्होंने उन्हें तालीम दी जिन्होंने और लोगों को तालीम दी, कैसे हुआ। अब वो हम आते हैं उस तरफ, लेकिन पहले यह जुमला, एक हदीस जो हमने सरनामा कलाम में तिलावत करने का शरफ हासिल किया, اور وہ حدیث کیا تھی؟ مولا واقع امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اشد شیعتنا لنا حبن، ہمارے شدید ترین شیعہ، شدید شیعہ کون ہوتا ہے کہ جو شدت شدید شیعہ کون ہوتا ہے؟ اسی حدیث میں لکھا ہے، ان اشد شیعتنا لنا حبن، کہ جو شدت سے، جتنی شدت سے ہم سے محبت رکھے گا وہ اتنا شدید شیعہ ہے ہمارا، اتنا پکا مضبوط شیعہ ہے. حبن ان اشد شیعتنا لنا حبن یکون خروج و نفس ہی، اس کے نفس کا اس کے بدن سے خروج، اس کی روح کا اس کے بدن سے جدا ہو جانا. یکون خروج و نفس ہی کا شرب احدکم، بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے تم لوگوں میں سے کسی کا بھی شدید گرمی کے دن میں ایک گلاس ٹھنڈا پانی کا پی لینا، کیا کیفیت ملتی ہے اس وقت؟ بس شدید گرمی کے دن میں ایک گلاس ٹھنڈا پانی پینے سے جتنا سکون ملتا ہے اتنا ہی سکون اسے ملے گا کہ جو ان اشد شیعتنا لنا حبن ہے. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، آٹھویں امام، انیس النفوس، سلطان العرب والعجم، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شدت کے ساتھ ہم سے تعلق رکھے گا تو وہ اس طرح سے جائے گا کہ جیسے شدید گرمی کے دن میں ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا کوئی پی لے، کتنا سکون ملتا ہے، بلکہ اب تو وہ تڑپتا ہے کہ وہ پانی مجھے مل جائے، اتنی شدید گرمی کا دن ہے. اب آ جائیے ہم بات کو ایک مرحلہ اور آگے بڑھا دیں، اور اہل بیت اطہار کے اختیارات و تصرفات میں سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں، ورنہ تو اگر موت کے سلسلے میں چلے گئے تو وہاں پر خود ان کے وہ اختیارات و تصرفات ہیں کہ جنہیں الگ سے بیان کیا جا سکتا ہے، مگر چونکہ بات کو آج کی حد تک میں سمیٹ دینا چاہتا ہوں، آج کی اس مجلس کے اندر سمیٹ دینا چاہتا ہوں، لہذا خواہش یہ ہے کہ ایک آدھ دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور بات کو ختم کر دیا جائے. آصف ابن برقیہ کی بات ہوئی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور ان کا تسلط جنات پر، شیاطین پر، ملائکہ پر، انسانوں پر، طیور پر، ٹھیک ہے. اب یہ مجھے بتائیے کہ جب حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے کہ جو تخت بلقیس مجھے لا کر دے سکتا ہے اور کتنی دیر میں، تو قال العفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت نے کہا کہ میں آج کے اس دن کے اختتام پہ میں لا کر دے سکتا ہوں، کہ سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے لا کے دے سکتا ہوں. جناب آصف برقیہ نے، کہ جو جانشین ہیں حضرت سلیمان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں آپ کو پلک جھپک کے لا کے دے سکتا ہوں، پلک جھپکنے سے پہلے. اور وہ آپ نے واقعہ پچھلے دنوں سماعت فرما لیا. یہ کیسے ہوا کہ جناب سلیمان کے اس جانشین کے پاس ایک حرف تھا 73 حروف میں سے اسم اعظم کے، جو 73 حروف ہیں، 73 حروف اسم اعظم کے جو ہیں، ان میں سے ایک حرف تھا جناب آصف برقیہ کے پاس، اور وہ لے آئے. اور اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ ایک اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، باقی 72 پروردگار عالم نے انہیں بھی عطا کیا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو. 73 خدا کے پاس ہیں، 72 اہل بیت کے پاس ہیں، اور جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں، اور پھر باقی انبیاء کے پاس، کسی کے پاس 5 تھے، کسی کے پاس 7 تھے، کسی کے پاس 11 تھے، کسی کے پاس 12 تھے، کسی کے پاس 15 تھے، کسی کے پاس 20 تھے، کسی کے پاس 27 تھے، بس اس سے زیادہ نہیں. اور وہ پوری روایت ہے کہ جس روایت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان انبیاء کے پاس، ہر ایک نبی کے پاس کتنے اسم اعظم کے حروف تھے، وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے روایت کے اندر. میں اس روایت کی طرف نہیں جا رہا، مگر بلکہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ نے انہیں اسم اعظم کا اتنا علم عطا کیا تو اتنا مرتبہ تھا، جب مرتبے میں زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں اور اسم اعظم کے حروف بھی عطا کیے گئے. اور اس کی دلیل کے لیے کہ جس کے پاس زیادہ علم ہو پھر وہ علم بانٹا کرتا ہے اسے، کہ جس کے پاس علم کی پیاس ہو، جو علم چاہتا ہو لینا اسے دیا کرتا ہے. اب جناب خضر آپ دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے جناب خضر کے پاس، اور پروردگار عالم حکم کر رہا ہے جناب موسیٰ کو، جاؤ اور جناب خضر سے پڑھو اور ان سے علم حاصل کرو. ایک دن ایسا ہوا کہ مسجد نبوی کے اندر رسالت میں آپ تشریف فرمائیں. ایک بزرگ ایک بوڑھا شخص داخل ہوتا ہے مسجد نبوی کے اندر, عجیب انداز ہے لباس پہننے کا اور مدینہ والوں کے پہننے اوڑھنے کا انداز نہیں ہے. تو یہ سارے افراد دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی مہمان ہے رسالت میں آپ کا, اور رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو میں کچھ سوالات لے کر آیا ہوں, ان کے جوابات آپ سے چاہتا ہوں. اور عالم یہ تھا کہ حضور اکرم حضور سرور کائنات حضور اکرم کے دونوں زانوؤں پر ایک ایک نواسا بیٹھا ہوا تھا. رسالت میں آپ نے فرمایا کہ آج ایک کام کرو, میرے ان دونوں نواسوں میں سے کسی ایک کا اختیار کرو, کسی ایک کو اختیار کرو, اور جو سوال مجھ سے کرنا چاہتے ہو وہ ان سے کر لو. اب رسالت میں آپ نے کہا تھا وہ آنے والے بزرگ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بالکل یا رسول اللہ جو آپ کا حکم سرانکھوں پر. اور اس کے بعد امام حسن مشتبہ علیہ السلام کا ہاتھ تھاما اور انگلی پکڑ کر انہیں مسجد نبوی کے ایک گوشے میں لے جاتے ہیں, اور کچھ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. جیسے بات ختم ہو جاتی ہے جانے لگتے ہیں تو رسول کی امانت نواسا رسول کے حوالے کرتے ہوئے جناب یہ بزرگوار جو ہے وہ جانے لگتے ہیں, اور خدا حافظ کہتے ہیں. جیسے مسجد نبوی کے دروازے سے رخصت ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ رسالت میں آپ سوال کرتے ہیں, یہ بتاؤ تشفی ہو گئی تمہیں, آپ کو تسلی اور اطمینان ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بالکل ویسا ہی اطمینان اور ویسی ہی تشفی اور تسلی ہوئی مجھے کہ جیسی تسلی آپ کے جوابات میں ہوا کرتی تھی, ویسا ہی سکون اور اطمینان اور قناعت مجھے ملی ان کے جوابات میں جیسے آپ کے جوابات سے مجھے تسکین ہوتی تھی. اور وہ وہاں سے چلے گئے مسکرا کر. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ انہیں تو ہم نے اس بزرگوار کو تو ہم نے نہیں دیکھا مدینہ منورہ میں کبھی, اور آپ نے تو خود دیکھا کہ ان کے پہننے اوڑھنے کا انداز بھی ہم جیسا نہیں تھا, یہ کون تھے یا رسول اللہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, فرماتے ہیں کہ یہ جناب خضر علیہ السلام تھے, اور یہ اکثر اس طرح سے ہماری بارگاہ میں آیا کرتے ہیں اور اپنے سوالوں کے جوابات ہم سے لے کر جایا کرتے ہیں. جناب موسیٰ وہ کہ جنہیں نبی خضر پڑھائیں, نبی موسیٰ وہ کہ جنہیں حضرت خضر علیہ السلام پڑھائیں, اور جو اپنے علم کی پیاس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بجھا رہے ہیں حضرت خضر, ان کا مقام کیا ہوگا؟ یعنی حضرت موسیٰ کو پڑھانے والے خضر اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا کرنے والے اہل بیت, رسول اکرم نواسۂ رسول بارہ امام علیہم الصلوۃ والسلام. لہذا یہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ہی جیسے تو ہیں, ہم ہی جیسے ایک عام انسان تھے, ہم ہی کی طرح سے آ کر زندگی گزاری اور ہم ہی کی طرح سے ان کا انتقال ہوا, یہ شہادت ہوئی اور دنیا سے ہم ہی کی طرح سے چلے گئے. اب یہ جو موازنہ ہے نا, ہمارے جتنے عقائد کا بگاڑ شروع ہوتا ہے وہ وہیں سے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اہل بیت سے کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں. اہل بیت اتھار کون ہے, ہم کون ہیں, یہ سن لیجئے مثال کے ذریعے سے تاکہ ایک بات بہت اچھے سے واضح ہو جائے. جب ہماری کلاس کے اندر کوئی ٹیچر آتا ہے, سر ہوں یا مس ہوں یا ٹیچر ہوں, پڑھانے کے لیے آئے, جغرافی کہہ لیجئے, انگلش کہہ لیجئے, کوئی زبان کہہ لیجئے, کوئی لٹریچر کہہ لیجئے, کوئی دنیا کا علم تصور کر لیجئے, اگر وہ علم ہمیں پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی کیا ہو گیا, ہم انہی کی طرح کے تو ہم بھی انسان ہیں, یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں, ہم بھی انہی کی طرح کے ہیں, ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے, اور وہ بہت بڑا فرق یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں, ہم ابھی ان پڑھ ہیں. یہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں, ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں اسکول میں. انسان وہ بھی ہیں, انسان ہم بھی ہیں, مگر اب دیکھیں کیا عرض کریں ہم آپ کی خدمت میں, بہت ساری باتیں اشارہ اور کنائے کے اندر ہوں گی, بہت تفصیل کے اندر ہم نہیں جا سکتے, بہرحال وقت بھی محدود ہے. لیکن اذان محترم, پڑھانے والا پڑھنے والا برابر نہیں ہو سکتا. جو جانتا ہے اور جو نہیں جان سکتا نہیں جانتا وہ برابر ہوتا ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, نہیں کیا؟ یہاں پہ یہ جو استفہام ہے, استفہام انکاری ہے, یہ طلب فہم کے لیے نہیں پوچھا جا رہا, یہ انکار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. کیا کس بات کا انکار کیا جا رہا ہے؟ اس بات کا انکار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ برابر نہیں ہو سکتے. ہم وہ کہ جو آیتیں نازل ہوں اس پر عمل کریں تو مومن بنے، اور جو عمل کرے اور اس کا کیا ہوا عمل آیت قرآن بن جائے وہ امیر المومنین ہوتا ہے. ہم محتاج ہیں کہ خدا کا حکم آئے، ہمیں سکھایا جائے، ہم سیکھ کر اس کی عبادت کریں، اور اہل بیت وہ کہ جو تسبیح سکھائیں ملائکہ کو، ہم وہ کہ جو احکام شریعت کے پیچھے پیچھے چلے، ہم وہ کہ جو حق کے پیچھے پیچھے چلے، اہل بیت وہ کہ حق جن کے پیچھے پیچھے چلے، اور ہم اور آپ وہ کہ جو اس وقت تک طاہر نہ ہو کہ جب تک کوئی مطہر حاصل نہ ہو جائے ہمیں. مطہرات کی فہرست تو آپ نے توضیح المسائل میں پڑھی ہوگی، یاد بھی ہوگی بہت سو کو. تو جب تک مطہر ہمیں نہ ملے ہم طاہر نہیں ہو سکتے. اور اہل بیت وہ ہیں کہ جب جناب ام ایمن مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد رسالت باب نے کہا کہ میرا نواسا میرے حوالے کرو، تو جناب ام ایمن نے کہا کہ ایک لہجے کے لیے بس رک جائیے، میں آپ کے نواسے کو غسل ولادت دلا دوں تاکہ پاک کر کے آپ کو پیش کر سکوں، تاکہ آپ کے ہاتھ نعوذ باللہ من ذالک. جناب ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا، اے ام ایمن تم اسے کیا پاک کرو گی جسے خدا نے پاک کر کے زمین پر بھیجا ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں خدا پاک کر کے یطہرکم تطہیرا کی سند دے کر بھیجے، اور ہم وہ کہ اس وقت پاک ہوں گے کہ جب پانی مل جائے گا پھر ہم پاک ہوں گے. لہذا یہ نقص ہے، یہ ڈفرینسز ہیں، یہ فرق ہے مراتب کا، اور پھر ہمارے اور ان کی کیفیت کے اندر کیا فرق ہے ظاہری طور پر وہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے، اس کی طرف میں خود عمدن اس طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں کہ جو پڑھائیں، جو سکھائیں دین، بلکہ جن کو فالو کر لینا دین، وہ اہل بیت، اور ہم جو دین کو فالو کرے تو ہم دیندار، وہ دین ہے ہم دیندار ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کی ایک مثال اور ہے ہمارے پاس. رسالت ماب تشریف فرمائے مسجد نبوی میں، اور حضور سرور کائنات نے ہمیشہ اپنی حیات طیبہ میں کوشش کی ہے اس بات کو کہ لوگوں تک اہل بیت کے مراتب کو پہنچا دیں، تاکہ لوگ اس بات سے کنفیوز نہ ہو کہ کیا فرق ہے ہم میں ان میں، اور جس کی وجہ سے پھر ہم انہیں اپنے جیسا سمجھنے لگیں، لہٰذا یہ تصور کرنے لگیں کہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہمارے نقائص ہیں وہ انہی کے نقائص ہیں، استغفر اللہ. حضور بیٹھے ہوئے اور رسالت ماب ہے، مولا کائنات علیہ السلام ہے، امام حسن ہے، امام حسین علیہ السلام ہے، اور ایک اور شخص ہے، یہ پانچ افراد بیٹھے ہوئے، اور رسول نے مسجد نبوی کی زمین سے ایک حجر کو، ایک کنکر کو اٹھایا اور اپنے دستے مبارک پر، اپنی ہتھیلی مبارک پہ رکھا، اور جیسے ہی رسول نے اپنے دستے مبارک پر اسے رکھا تو وہ تسبیح کرنے لگا، پروردگار کی حمد و ثنا بجا لانے لگا. تو رسول نے پھر جب اس کی حمد و ثنا کا ایک سلسلہ چلتا رہا، پھر وہ کنکر اٹھا کر مولا کائنات کو دے دیا، مولا نے اپنے دستے مبارک پر رکھا، وہاں پر یہ پتھر، یہ کنکر خدا کی حمد و ثنا کرتا رہا، یہاں تک کہ آگے بڑھا سلسلہ، امام حسن علیہ السلام کو یہ کنکر دیا، ان کے دستے مبارک پر بھی حمد و ثنا جاری رہی، پھر یہ کنکر آیا مولا حسین علیہ السلام کے دستے مبارک پر، وہاں بھی حمد و ثنا جاری رہی، یہاں تک کہ مولا حسین علیہ السلام پہ آ کے سلسلہ رک گیا، اور رسول اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اب دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہاں تک کہ وہ جو پانچواں شخص بیٹھا ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ مجھے بھی دے دے کنکر، میں بھی اپنے ہاتھ پر رکھنا چاہتا ہوں. مولا حسین علیہ السلام نے رسول کو دیکھا، رسول نے آقا کو اشارہ کیا، اور نواسے نے وہ کنکر رسول کے اشارے پر اس شخص کے حوالے کر دیا. اب جیسے ہی وہ کنکر اس نے ہاتھ پر رکھا، تسبیح اور حمد و ثنا کا سلسلہ رک گیا، یہاں تک کہ وہ ذرا سا افسردہ ہو کر، تھوڑا سا تیش میں اور غضب میں آ کر کہتا، یا رسول اللہ یہ میرے ہاتھوں پہ آ کے کیوں نہیں بولتا؟ اس کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان چار ہستیوں کی جیسا سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری فضیلت بھی ان چاروں جیسی ہی ہے، یا میرا مقام بھی ان چاروں جیسا ہی ہے، یا میں ان چار جیسا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنا سوال اس کنکر سے پوچھ لے، یہ کنکر تجھے جواب دے دے گا، حمد و ثنا نہیں کرے گا، جواب دے دے گا. अल्लाह हो अकबर, अल्लाह हो अकबर, हम्दो सना नहीं कर रहा, उसके हाथों पे आके हम्दो सना नहीं कर रहा वो कंकर, लेकिन रिसालत माप कह रहे कि तू इस सवाल का जवाब इस कंकर से ही पूछ ले, ये कंकर तुझे खुद बता देगा। यहां तक कि उसने पूछा बता कि तू क्यों मेरे हाथों पे आके तस्बीह करना रोक रहा है, रोक दिया तूने तस्बीह करना। कहा मुझे अल्लाह की जानिब से हुक्म है कि उसके जो चुने हुए लोग हैं उन्हीं के हाथों पर आकर मैं अल्लाह की हमदो सना करने की इजाजत रखता हूं, मुझे अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, या रसूल के हाथ पर आकर बात करूंगा या रसूल जैसों के हाथ पर आकर गुफ्तगू करूंगा। लिहाजा ये मोहम्मद और अली से लेकर मेहदी अज्जलल्लाहु अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ अलैहिम अव्वलुत तहियत व सना, हमारे मौला व आका, हमारे आइम्मा अथार अलैहिस्सलाम, ये वो हस्तियां हैं कि जिनके बारे में नस है कि अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। लिहाजा ये हस्तियां और हैं, इनकी फजीलत बुलंद है, इनका मकाम अरफा वाला है। और इंसान अपने लिए घाटे का सौदा उस वक्त करता है कि जब अहले बैत अथार को समझने के लिए अहले बैत अथार की मदद नहीं लेता, अपनी अकल चलाना शुरू करता है, कहता है कैलकुलेशन ऐसे करता है, देखे अकल ये बोलती है कि यूं यूं यूं, तो अकल शैतान ने भी इस्तेमाल की थी, अकल नूह के बेटे ने भी इस्तेमाल की थी और गलत नहीं की थी। गलत नहीं की थी मतलब ये नहीं कह रहा कि उनका अमल बिल्कुल ठीक था, नहीं, लॉजिकल जो बात कर रहे थे वो लॉजिकल तो थी। क्या लॉजिकल थी? कि ये पहाड़ मुझे बचा लेगा, लॉजिकली ठीक है, लेकिन अम्र इलाही के मुकाबले पर है, इसलिए वो डूब गया। इतने बड़े इतने ऊंचे पहाड़ पर खड़े होने के बावजूद भी कि जो पहाड़ उस दुनिया का उस वक्त का हाईएस्ट पीक था, यानी कि तूफान के अंदर कश्ती के डूब जाने का फिर चांस होता है, मगर जो बड़ी बड़ी पीक्स होती है वहां तक पानी नहीं पहुंचेगा, इतना पानी आएगा कहां से। लेकिन बात उस वक्त की है कि जब नॉर्मल सिचुएशन हो, मगर जब सिचुएशन ये हो कि अल्लाह का हुक्म ये है कि आज फकत वही बचेगा कि जो इस कश्ती पर होगा, तो उसके अलावा जो कोई जिस बुलंद तरीन मकाम पर भी होगा वो हलाक हो जाएगा। इसीलिए रसूल ने फरमाया कि मसलो अहले बैती कमसले सफीनत नू, हम अहले बैत की मिसाल सफीना नू की मिसाल है, मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा गरीका वहावा। याद रखना जो इस कश्ती पर यानी कि अहले बैत के साथ सवार हो गया, जिसने अहले बैत के दामन को थाम लिया, नजा निजायत निजात याफ्ता हो गया, वमन तखल्लफान हा जिसने इनकी मुखालिफत की, गरीका बहावा डूब गया हलाक हुआ, हाथों को जोड़कर मकाम नबूवत में आकर अपनी पेशानी को इनकी डेवड़ी पर अदब के साथ झुकाकर यह पूछना चाहूंगा या रसूल अल्लाह ये बताइए कि जब हवा गरीका कह दिया था कि गर्क हो जाएगा, तो हलाक हो जाएगा कहने के लिए हवा का लफ्ज इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी। अजब नहीं रिसालत माब इरशाद फरमाए कि कुछ ऐसे होते हैं कि गर्क तो हो रहे होते हैं, मगर कोई बाहर से जाकर उन गर्क होने वालों को बचाकर बाहर ले आता है, लेकिन जो अहले बैत से मुखालिफत करते हैं और अहले बैत के साथ नहीं होते वो गर्क भी होते हैं और उनका हलाक होना भी तय है। तो प्रॉब्लम कहां से आती है? जब इंसान अपनी लॉजिक को यूज करता है और ये कहता है कि भाई आई एम समथिंग, पढ़ाई की है मैंने, इतने साल मैंने फुला यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा है और मैं फुला फुला साइंसेस का माहिर हूं, लिहाजा ये जो मेरा इल्म है ये मैंने मेहनत से बनाया है, आई हैव मेड माई सेल्फ, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, सेल्फ मेड मैन हूं मैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने अकल के हिसाब से करूं। आप अपनी अकल बिल्कुल यूज करें, लेकिन ये अकल बनाने वाला जो है ना, इस अकल को खल करने वाला, उस पर भी ईमान रखें ताकि ये अकल आपकी ठीक काम करे। वरना ऐसे भी अफराद हैं कि क्या कहा जाए, चले मैं बात को मुख्तसर करूं और चूंकि दामने वक्त सिमट गया, सारा का सारा प्रॉब्लम वहां पर आकर शुरू होता है कि जब हम कंपैरिजन इस तरह से शुरू कर देते हैं कि जिस तरह से कंपैरिजन ठीक नहीं होता, और कयास करते हैं, लॉजिक को यूज करते हैं। एक बात याद रखिएगा, इस्लाम हुआ तस्लीम, इस्लाम इज इक्वल्स टू टोटल सरेंडर। आप कहेंगे ये तो जबर है, ये तो आप मजबूर कर रहे हैं, हम आपको मजबूर नहीं कर रहे, बल्कि यही है इंसान का इम्तियाज कि वो अक्ल इस्तेमाल करे और अपनी अकल को उन अकलों के सामने सरेंडर कर दे कि जिनसे बड़ी अकलें अल्लाह ने पैदा ही नहीं की। यानी जे अल्लाह इंसान इंसान बीमार होता है तो किसी बेहतरीन के पास जाता है इलाज करने वाले। अब इंसान कहता है कि मैं जिंदगी गुजारना चाहता हूं, मुझे क्या पता कि कैसे जिंदगी गुजारनी है, मैं उन अफराद के पास चला जाऊं जिन्हें अल्लाह ने अपना नुमाइंदा बनाकर इस जमीन पर भेजा, यानी कि आयम अथार अलहमसलाम, जिनके बारे में रिसालत माँ बता गए, अव्वल हम अली व आखिर हम मेहदी, बस उनके बाद कोई नहीं। अच्छा, अब आ जाइए मैं आपकी खिदमत में एक मिसाल पेश कर दूं कि लॉजिक वालों को भी रसूल ने जवाब देकर समझाने की भी जरूर कोशिश की है, जिस हद तक उनके बात समझ में आ जाए, अहले बैत अथार की फजीलत की और मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की फजीलत की। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम का वो मशहूर व मारूफ तरीन वाकया कि जो मदीना मुनव्वरा के अंदर 40 घरों पर एक साथ मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम जाहिर हुए, एक ही दिन 40 अलग घर एक ही वक्त पर अली को दावत हुई, मौलाए कायनात ने सारी दावतें कबूल की और 40 के 40 घरों पर मौलाए कायनात पहुंच गए, नजर आए। अगले दिन लोग पहुंचे रिसालत माँ आपके पास, या जब खबर मिली तो लोग पहुंच गए रसूल के पास, या रसूल अल्लाह समझ नहीं आया, और कुछ लोग आए मुबारकबाद देने के लिए कि मौलाए कायनात की एक और फजीलत हमारे सामने आई। तो रसूल से इन लोगों ने कहा कि हमें समझ नहीं आया, तो हुजूर अकरम ने यह जवाब इनायत फरमाया कि अगर ये तो 40 जगह थी, अगर 1000 जगह भी होती तो अली की अपनी अबी तालिब उन 1000 की 1000 जगहों पर पहुंच जाते और जाहिर हो जाते। और दूसरा जवाब जो था, जो लॉजिक वालों के लिए मैं समझता हूं कि बड़ा अपीलिंग हो सकता है अगर कोई समझना चाहे तो वो जवाब यूं था कि रसूल ने पूछा कि तुम बताओ तुम कहां रहते हो, यमन, तुम कहां रहते हो शाम, तुम कहां रहते हो कूफा, तुम कहां रहते हो हिजाज, तुम कहां रहते हो फलां, जितने भी इलाके हैं हुजूर अकरम ने अपने दौर के अंदर पूछा कि तुम कहां रहते हो, यहां रहते हो, मदीना रहते हो फलां, का तुम ये बताओ मदीना में सूरज नजर आता है, बिल्कुल, हिजाज में सूरज नजर आता है, जब सूरज निकलता है तुम देखते हो, नजर आता है तुम्हें, हां आता है, मक्का में रहने वाले भाई तुम्हें सूरज नजर आता है जब ये सूरज निकलता है, कहां नजर आता है, भाई इराक के अंदर करबला में रहने वाले तुम्हें नजर आता है सूरज जब सूरज निकलता है, हां, नजफ में रहने वाले तुम्हें नजर आता है, हां नजर आता है, जब एक सूरज इतनी सारी जगहों से एक वक्त में जब तुलू होता है तो करोड़ों जगह से करोड़ों लोग उसे एक ही वक्त में देखते हैं, तो वो अली इब्नी अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जिस अली की मोहब्बत में ये सूरज अल्लाह ने खल किया है वो एक वक्त में इतनी सारी जगहों से देखा जा सकता है, तो फिर अली की इब्नी अबी तालिब अलैहिस्सलाम तो सिर्फ 40 घरों पे नजर आए हैं। ये वो हस्तियां हैं कि जो मुहित हैं, मुहित हैं, फैली हुई हैं, लिहाजा एक वक्त में ये मुतअद्दिद जगहों से नजर आ सकती है, और ये खुदा ताला की तरफ से इनको अता किया हुआ एक ऐसा इख्तियार और एक ऐसा तसर्रुफ है कि मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम एक वक्त में 40 जगहों से नजर आए। तुम मक्का में रहकर सूरज तुम्हें नजर आता है, आता है, तुम फला जगह पे रहते हो मदीना में जब सूरज निकलता है तुम्हें नजर आता है, एक ही वक्त पर सूरज निकलता है मगर तुम्हें भी नजर आता है, तुम्हें भी नजर आता है, तुम्हें भी नजर आता है, तुम्हें भी नजर आता है। अली इब्न अबी तालिब भी इसी तरह से एक ही वक्त में तुलू हुआ मगर नजर 40 के 40 जगहों पर आया। अजीजान मोहतरम, परवरदिगार आलम ने इन्हें जो मकाम और मनसब इनायत फरमाया है, जिसे मकाम खिलाफत इलाहिया, मनसब इलाहिया कहा जाता है, तो उस मनसब के तकाजे के तौर पर जो विलायतें और जो तसर्रुफात थीं वो भी उन्हें अता की हिदायत के कामों के लिए, ये सारी चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं जो परवरदिगार आलम ने अता की। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि जैसे वो कहते जाएं उस तरह से हम उनके कहे पर अमल करते जाएं, और अपने आप को एक भिखारी की तरह से, एक फ़कीर की तरह से, एक ग़ुलाम की तरह से, ग़ुलाम, एक छोटे से ग़ुलाम की तरह से, छोटा सा ग़ुलाम क्यों कहता हूँ कि इमाम अलैहिस्सलाम अगर उनकी आवाज़ भी बुलंद हो जाए तो इंसान फौरन मुतवज्जो होकर खड़ा हो जाए और पूछे मौला आपने कुछ इरशाद फरमाया, मौला कोई हुक्म है हमारे लिए। परवरदिगार हमें नसीब करे कि हम कल्बे नाज़नीन इमाम मासूम अलैहिस्सलाम को राज़ी कर सकें, उसको खुशनूद कर सकें, और परवरदिगार आलम हमें वो इनायत करे ईमान की दौलत कि हमारे दिलों में इताअत इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ज़्यादा चमक के साथ, भरपूर अंदाज के साथ आए, और हम यही पैगाम अपनी नस्लों को भी दें कि याद रखो ऐ बच्चों, किसी भी गैर के दर पर कभी ना जाना, इसलिए कि जब तक तुम दरे अहले बैत पर रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते, जब तक तुम अहले बैत अथार की हदीसों का मुतालआ करते रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, मगर जहाँ तुमने अपनी अक्ल को अहले बैत की हदीसों पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू की, जब भी तुमने लॉजिक को अहले बैत अथार की हदीसों पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू की, जब भी तुमने मुझे ऐसा लगता है बोलने वालों को अहले बैत पर फजीलत देना शुरू कर दी, तो याद रखना अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के दर से खुद को दूर पाओगे, और अल्लाह से हमेशा यही दुआ करना बारे इलाहा कभी कोई ऐसा शैतान ना हो कि जो आकर मुझसे अहले बैत की मोहब्बत छीनने की कोशिश करे और कामयाब हो जाए, कभी ऐसा ना हो। ऐ खुदा हमेशा मुझे इस दर पर कायम रख, साबित कदम रख, मैं, मेरी नस्लें, मेरी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद और नस्लों तक कभी भी दर अहले बैत से जुदा ना हो, कभी इस दर से दूरी ना आए। बस अजीज़ान मोहतरम, विलायत इख्तियारात तसर्रुफात अहले बैत अथार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अहले बैत का ये इख्तियार और उनका ये तसर्रुफ जिस तरह से अजीम है, जिस तरह से बड़ा है, जो उनकी मंजिलत जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी मुसीबत उन पर आई है। अजीज़ों, कभी बाज़ारों में लेकर आया जाता है, कभी दरबारों में लेकर आया जाता है, कभी चादरों को छीना जाता है। मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अपने बाबा के ज़ख्मी जिस्म को देखते हैं और इतना शिद्दत के साथ मौला गिरिया फरमाते हैं, इतनी शिद्दत के साथ मौला गिरिया फरमाते हैं कि हाथ पसे पुश्त रसन से बीबी के बंधे हुए हैं, बीबी बिनती अली के। और एक मर्तबा देखा है कि भतीजा सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ऐसा गिरिया कर रहे हैं अपने बाबा के बेसर और बेकफन के लाशे को देखकर कि करीब है कि सैयद सज्जाद की रूह परवाज कर जाए। सोचा कि कैसे सैयद सज्जाद को बचाऊं। इतने में बीबी जैनब कुबरा ने खुद को पुश्तनाका से जमीन पर गिरा दिया, और जैसे ही बीबी ने खुद को जमीन पर गिराया तो काफिले को रोका गया। जैसे काफिले को रोका गया तो जनाब जैनब कुबरा ने कहा, बेटा सज्जाद सब्र कर, बेटा सैयद सज्जाद सब्र कर। हर मरहले पर बीबी बिनते अली ने मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की हिफाजत की है, मगर अजीजो शहजादी का सर अकदस ऐसे जख्मी हो चुका था कि बीबी के सर से खून हमेशा जारी रहता था मदीना वापस आने के बाद भी। पूछा गया क्यों, तो जवाब आया कि जब भी कोई बच्चा पुश्त नाका से गिरता था तो कहीं वो टापों तले रौंदा ना जाए, इसलिए बीबी खुद को भी जमीन पर गिरा लिया करती थी कि काफिला रुक जाए। मगर अजीजों जब दरबार में हाजिर हुए हैं तो एक ऐसा मंजर है कि जिसे क्या बयान किया जाए। अजीजान मोहतरम, किसी ने मदीना में मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम से पूछा कि आका आपके गले में खारदार तौक था। मौला, खारदार तौक किसे कहते हैं, जिसमें अंदर से खार हो, कांटे हो और अंदर की जानिब कांटे निकले हों, यानी कि मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम अपना सर, अपनी गर्दन को हरकत न दे सकते हो, मगर फिर भी आका सैयद सज्जाद का सर अकदस झुका हुआ था। का मौला आपका सर झुका हुआ था यह खबर मिली, मगर जब सरकार मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम गरीब मजलूम सफीर हुसैन जब कूफा पहुंचे हैं, दरबारे मलऊन के अंदर हैं, तो एक मरतबा सीने को ताना हुआ है, चेहरे को उठाया हुआ है, और मौला जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के खुतबा देते हैं और कहते हैं कि तू ये गलत समझता है कि तू हमें कत्ल कर देगा, मगर आका जब आपको देखा, आपका सर झुका हुआ, आपकी गर्दन झुकी हुई, आपका सर उठता ना था मौला। आका सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा, तूने इंसाफ न किया। ए सवाल करने वाले, जब जनाब मुस्लिम इब्न अकील दरबार कूफा में गए थे तो अकेले थे, अरे जब मैं आया तो माँ फूफी बहने मेरे साथ हैं, नबी जादियां और अली जादियां मेरे साथ हैं, मगर हाँ अजीजो एक दरबार में ऐसा भी हुआ कि लई ने एक एक बीबी को नाम ले लेकर पुकारना शुरू किया, पूछने लगा ये बीबी कौन है, फिर इशारा करके पूछने लगा बीबी कौन है, फिर एक बीबी की तरफ इशारा करके मलून पूछ था ये बीबी कौन है, अरे यहां तक के कहने लगा मुझे तुमने तारुफ नहीं कराया, अरे अली की बेटी भी तो इसी दरबार में होगी ना, मुझे बतलाओ वो कहां है, मुझे उस अली इब्ने अबी तालिब की बेटी का चेहरा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बस ये होना था, एक मरतबा हर बीबी जनाब जैनब कुबरा के सामने आ गई, यहां तक के जनाब फिजा ताजियानों को बुलंद किया गया, तलवारों को नियामों से निकाला गया, कहा गया है फिजा सामने से हट जाओ वरना तलवारें चल जाएंगी। ये सुनना था एक मर्तबा जनाबे फिजा ने कहा है हबशा से ताल्लुक रखने वालों, हे गुलामों तुम्हारी नामोस पर तलवार उठाई जा रही है, कुछ लम्हों बाद सर को तन से जुदा भी कर दिया जाएगा, तुम्हारी गैरतें कहां रह गई है। ये सुनना था एक मर्तबा हबशी गुलामों ने अपनी तलवारों को नियामों से बाहर निकाला, आगे आने के बाद कहते हैं ऐ शख्स अगर खबरदार हमारी नामूस की जानिब तलवार उठाई गई है, कोई दुर्रा चलाया गया है, अगर निगाहें उठी हैं तो याद रखना यहां पर खून की नदियां बह जाएगी। मगर है ये जुमला सुनना था एक मर्तबा दिले ज़ैनब कुबरा टूट गया, आंखों से आंसू जारी हो गए, बीबी ज़ैनब ने रोकर मदीना का रुख किया, कहा नाना तेरे घर की कनीजों का जितना एहतराम मगर हाय तेरी बेटी ज़ैनब लईनों के दरबारों में बाजारों में बेचादर के लायक। अला वलअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू आला मुहम्मदिन अय्यमुन्क़लबिन यन्क़लिबून। परवरदिगारा तुझे वास्ता मुहम्मद व आले मुहम्मद का, हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह से मकबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगारा जो कुछ पढ़ा गया ए खुदा ये तौफीक इनायत फरमा कि हम सब उस पर अमल पैरा हो सकें। बार इलाहा इमाम ज़माना अलैहि सलाम के कल्ब मुतहर को हम सब से राज़ी व खुशनूद फरमा, हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हज़रत के सदक़े में हमारे मरहूमीन की कब्रों पर अपनी रहमतों की बारिश फरमा, हज़रत के सदक़े में हम सब के रिज़्क़ मारिफत में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगारा हमारे दिलों को ऐसे नरम कर दे कि जब भी नाम मौला हुसैन अलैहि सलाम आया करे तो हमारी आँखें नम हो जाया करें। परवरदिगारा तो बड़ा करीम है, अपनी हुज्जत अपने वली इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें आका व मौला के आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।